मेरे अत्यंत स्नेही मित्र नमस्कार। आज 18 मई 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले दो दिनों से हम एक बड़े ही प्यारे मुद्दे पर बात कर रहे हैं और वह डर का मुद्दा है। और ये जो डर का मुद्दा है जो जुड़ा हुआ है हमारे बचपन से और तब जब हम युवा हो जाते हैं, इन दोनों स्थितियों से आइए इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, मासूमियत की हम बात कर चुके हैं, हम जिज्ञासाओं की बात कर चुके हैं, हम अवधारणाओं की भी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से हम अवधारणाओं में जीने लगते हैं। और जब हम अवधारणाओं में जीने लगते हैं तो सच पूछिए हमारी पूरी एनर्जी, हमारे विचार, हमारे एक्शन सब कुछ उन अवधारणाओं के गुलाम हो जाते हैं, जो मैंने एक हाथी के बंधे हुए हाथी के उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी मैं पिछले दो दिनों से आपसे डिस्कस कर रहा हूं उस पर आप सबने अपने अपने नजरिए से, अपनी अपनी स्थितियों के हिसाब से और अपने अपने मनोविज्ञान को भी ध्यान में रखकर जरूर कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा। और जितना ज्यादा उसके बारे में आप सोचेंगे, जितना ज्यादा विचार करेंगे, उतने ही अच्छे आपको और व्यावहारिक निष्कर्ष मिल सकेंगे और इनफैक्ट वही आप सबके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकेगा। और खुद मैं भी मित्रों, जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो सच पूछिए तो बात करने के बाद मुझे अपने लिए भी कई सारी नई चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि बात करने के दौरान कुछ ऐसी नई बातें निकल जाती हैं जो इससे पहले कभी सोचा ही नहीं था। फ्रेंड्स, जब हम बड़े होते हैं तो देखिए अब और क्या स्थितियां होती हैं। एक तो जो अवधारणाएं होती हैं वो यूं कह लीजिए कि हमारी पूरी के पूरी ऊर्जा क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित कर देती है। जैसे एक सांप होता है ना, सांप कुंडली मार के बैठ गया है। पुराने चित्रों में आपको दिखाई देगा, कथाओं में भी ये बात मिलती है कि सोने के घड़े को एक सर्प ने लपेट, अपने पूरे के पूरे शरीर से लपेट रखा है और उसके मुंह पर अपना फन ऊंचा करके छत्र सा बनाकर उस जो सोने का जो सोने की असरफियों से भरा हुआ जो घड़ा है उसकी रक्षा कर रहा है। ये तो रक्षा तो हो रही है, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर घड़े में सोने की असरफियां भरी हुई हैं और उन असरफियों को खर्च नहीं किया जा रहा है, उसकी रक्षा की जा रही है, तो उन अशरफियों में और अगर उसी घड़े में आप पत्थर के टुकड़े भर दें, दोनों में क्या फर्क रह जाएगा? दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सांप उसकी रक्षा कर रहा है। इसका मतलब है कि हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो जब हम उपयोग ही नहीं कर सकते तो फिर चाहे सोने की असरफियां हों या फिर पत्थर के टुकड़े हों, वो सोने की असरफियां होते हुए भी पत्थर के टुकड़े ही हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो ऊर्जा है, जब हम बड़े हो जाते हैं, क्योंकि छोटे रहते हैं तब तो हम बिल्कुल यूं कह लीजिए कि बिंदास रहते हैं, कहीं भी कुछ बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कर देंगे, संकोच नहीं है, इस बात की चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, जो कहेंगे जो करेंगे सब हमारे माता पिताजी संभालेंगे, हम तो अपना मस्त मलंग हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। तो बट नेचुरल है कि हम अपने अंदर की ऊर्जा को निकलने का मौका दे रहे हैं, लगातार वो ड्रेन हो रही है, ड्रेन आउट हो रही है, क्योंकि हम एक्शन में हैं। देखिए, होगा तभी जब हम एक्शन में होंगे और बचपन में हम एक्शन में होते हैं। सच पूछे तो एक्शन में होना ही यह बताता है कि हमें डर नहीं लग रहा है। वाइस वर्सा इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि चूंकि हमें डर नहीं लगता है इसलिए हम एक्शन में होते हैं, या एक साथ दोनों चीजें हो रही होती हैं। जो भी आप इस बारे में कहना चाहें, जो भी निष्कर्ष निकालना चाहें, मेरी समझ से दोनों ही निष्कर्ष आपके सही होंगे। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये जो मैंने सर्प या जो नाग का एक उदाहरण दिया है, एक बिंब आपके दिमाग में जो मैंने प्रस्तुत किया है मित्रों, ये हमारी अवधारणाएं हैं, चीजों के बारे में हमने परसेप्शन बना लिए हैं, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसके लिए समाज सजा देगा, इसके लिए कानून सजा देगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें इन सब को किनारे करके कुछ भी करते लग जाना चाहिए, नॉट एट ऑल। फिर तो विवेक और अविवेक की स्थिति आएगी, क्योंकि समाज कुछ ना कुछ चीजों को नियंत्रित करेगा ही और उसे करना ही चाहिए और हमें भी उसे स्वीकार करना चाहिए। तो जहां सत्य पर आधारित अवधारणाएं हैं उसको तो नकारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो एक हमारा अनुशासन है, हमें उस अनुशासन में रहना ही होगा। और सच पूछे तो वो जो अनुशासन है वो कहीं न कहीं हमारे ऊर्जा का दिशा निर्देश करता है। अगर वो अनुशासन न रहे तो हमारी जो ऊर्जा है, हमारे जो एक्शन है, वो बिखर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। उस ऊर्जा का आप क्या करेंगे जो इकट्ठी होकर के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम नहीं कर रही है, तो बिखरती रहेगी ऊर्जा, वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकेगी। मतलब हमारा ऐसा एक्शन जो चाहे कितना भी निडर होकर के किया जाए, अगर कुछ रच नहीं रहा है, कुछ गढ़ नहीं रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है, तो उसके होने का अर्थ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो तो खतरनाक होगा कि सुनामी आ जाएगी। तो ये जो सामाजिक या वैधानिक जो अनुशासन, सांस्कृतिक जो अनुशासन होते हैं, ये तो होने ही चाहिए। इसको आप फिर अवधारणाओं में मत लीजिएगा। अवधारणाएं वे जो हम अपने बारे में बना लेते हैं, और जो अवधारणाएं बनाते हैं वो गलत अवधारणाएं होती हैं। वो चाहे समाज की वजह से बन जाए, चाहे हमारी परवरिश की वजह से बन जाए, चाहे हमारे वातावरण की वजह से बन जाए, चाहे किसी पर्टिकुलर घटना की वजह से बन जाए, जिसकी वजह से भी बन जाए। और मुझे लगता है कि एक मौका है जब हमें अपने बारे में बनाई गई इस तरह की अवधारणाओं पर विचार करना चाहिए। मित्रों, अक्सर आपने सुना होगा कि हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, थोड़ी देर के लिए एकांत में रहना चाहिए, कम से कम थोड़ा समय तो हम अपने लिए निकालें कि हम अपने साथ रह सकें, या जिसे हम अपनी आध्यात्मिक शब्दावली में कहते हैं आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। ये वाक्य आपने सुने होंगे। इसका मतलब क्या है? आप अपने साथ कैसे रहेंगे? आप तो अपने साथ ही तो है, और किसके साथ है? अपने साथ रहने का मतलब है कि हम अपने बारे में भी तो सोचें। अपने बारे में सोचे का मतलब है अपने गहराई में जाकर के देखें, झांकें, वो साक्षात्कार है। तो हम अपनी अवधारणाओं के बारे में सोचें कि अवधारणा मेरे अंदर कहां से आई है। मान लीजिए कि मुझे कहीं क्लास में क्वेश्चन पूछने में डर लगता है, संकोच होता है कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछता, या कभी कहीं मैं मीटिंग में होता हूं या 10-20 लोग होते हैं तो सब डिस्कस करते हैं तो मुझे बोलने में डर लगता है। हालांकि मेरे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं और मुझे पक्का मालूम है कि अगर मैं बोलूंगा तो लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे और लोग मेरे फैन भी हो जाएंगे, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं। अपने बारे में मेरे मन में बहुत जबरदस्त इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, या फिर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ही है। तो ये जो सारी अवधारणाएं जो मेरे दिमाग में अपने बारे में बैठी हुई है, बनी हुई है, मुझे विचार करना चाहिए इनके बारे में कि ये क्यों बन गई है। अतीत की घटनाओं पर जाइए, सोचिए कि क्या क्या घटा, क्या क्या हुआ जब इस तरह की विचार ने मेरे दिमाग में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद फिर कैसे उस पर परतों पर परतें परतें पर परतें जमती चली गई और आज वो इतनी ठोस हो गई हैं कि वो मेरे जीवन को कंडक्ट कर रही हैं, मेरे जीवन को निर्देशित कर रही हैं, मेरे पूरे जीवन का संचालन कर रही हैं। और इसकी वजह से जो मेरी ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब प्रश्न पूछूं मैं क्लास में उठकर, ये ऊर्जा का प्रदर्शन है। एक मीटिंग हो रही है वहां मैं अपनी बात रखूं, अपने आइडियाज शेयर करूं, मीटिंग होती इसीलिए है। तो अगर मैं शेयर कर रहा हूं तो मैं अपने ऊर्जा को एक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी कि मैं एक्शन में हूं, मेरी ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। तो वो कौन सी कुंडली है? सर्प की कुंडली है जो मुझे जकड़े हुए है, क्योंकि जो भय है, जो बड़े होकर के जो हमें थोड़ा भय लगता है, मित्रों मुझे इसका मूलभूत कारण मुझे यह कुंडली ही लगती है। देखिए, एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए। इसे आप एक कंक्लूजन के रूप में भी ले सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में। जैसे एक पत्थर पड़ा हुआ है, चट्टान है, राइट। अब वो चट्टान जमीन पर पड़ा हुआ है, पता नहीं कब से पड़ा हुआ है, ठीक है। सामान्य तौर पर अगर चट्टान पड़ा हुआ है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन एक जड़ एनर्जी उसमें भी है, एनर्शिया वाली जो एनर्जी होती है वो उसमें भी है। ऐसा नहीं है कि चूंकि पत्थर लुढ़क नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, तो उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है। अगर मैं अपना सिर उस पत्थर पर मारूं तो सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो ये जो सिर के 2 टुकड़े मेरे हुए हैं वो पत्थर की एनर्जी के कारण हुए हैं। इसका मतलब है कि जड़ अवस्था में भी उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो है, लेकिन क्या पत्थर में बस इतनी ही एनर्जी है जितनी मैं अभी महसूस कर रहा हूं, या उससे कई गुना ज्यादा है? तो जब आप इस पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इस पत्थर में तो इसकी तुलना में कई गुना ज्यादा एनर्जी है, हजारों गुना ज्यादा एनर्जी है। तो वो एनर्जी कहां छिपी हुई है? जब आप इस पर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हां, अगर इस पत्थर को मैं लुढ़का दूं तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। फिर अगर, और फिर अगर मैं इस पत्थर की स्पीड लगातार बढ़ाता चला जाऊं तो इसकी एनर्जी भी कई गुना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। पत्थर जितना तेजी से लुढ़केगा, जितना स्पीड से चलेगा, उसमें उतनी ज्यादा ऊर्जा आती जाएगी, मारक क्षमता उसकी बढ़ती जाएगी। आप देखिए फ्रेंड्स कि जहाज जब उड़ते हैं, हवाई जहाज की बात मैं कर रहा हूं, अखबारों में आप पढ़ते भी होंगे कि पता लगा कि हवाई जहाज उड़ रहा है और उड़ते हुए किसी पक्षी से टकरा गया, राइट। तो जब वो पक्षी से टकरा गया तो पक्षी और हवाई जहाज के वजन की तुलना करके देखिए, एनर्जी की तुलना करके देखिए, कोमलता की तुलना करके देखिए, कोमलता और कठोरता की, तो उस जहाज के सामने उस पक्षी की कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। वैसे जहाज चुपचाप एयरपोर्ट पर खड़ा है, विमान खड़ा है, विमान कहना चाहिए, जहाज का मतलब वो पानी का जहाज हो जाता है, हवाई जहाज या मैं कहूं तो, हवाई जहाज एयरपोर्ट पर खड़ा है, उसके ऊपर उसके जो दोनों डैने जैसे पंख होते हैं उस पर आकर के कितने भी पक्षी बैठे, कितने भी पक्षी टकराएं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, न तो पक्षियों को ज्यादा फर्क पड़ेगा न हवाई जहाज को फर्क पड़ेगा। लेकिन अब जब हवाई जहाज उड़ रहा है और अब जबकि पक्षी भी उड़ रहे हैं तो दोनों के पास फुल ऑफ एनर्जी है, दोनों के फुल एनर्जी काम कर रही है। तो ये दो फुल एनर्जी की टकराहट है। अब वो जो पक्षी है वो सामान्य पक्षी नहीं रह गया और ये जो हवाई जहाज है ये हवाई जहाज नहीं रह गया है। दोनों अपनी ऊर्जा के फुल चरम पर हैं और अब टकरा रहे हैं, तो दो बहुत ऊर्जा के पिंड टकरा रहे हैं, आप समझिए। और जब दो पिंड टकराएंगे, कोलाइड होगा, तो धमाका भी तो उतना तेज होगा। तो पता लगा कि उस पक्षी से टकराने के कारण हवाई जहाज का जो पंख था वो खराब हो गया और हवाई जहाज को जमीन पर उतारना पड़ा। सोच के देखिए ये क्यों हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दोनों एक्शन में थे, दोनों गतिशील थे, यानी कि जो इनकी इनर्शिया जो एनर्जी थी, जो बिल्कुल जड़ ऊर्जा थी, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, वो गतिशील ऊर्जा में बदल गई। और गतिशील ऊर्जा में बदलते ही उस ऊर्जा में कई गुना ज्यादा इजाफा हो गया। तो अब हुआ क्या कि हवाई जहाज जब रनवे पर खड़ा है तो आप कह लीजिए कि ये डरा हुआ है, उड़ने से डर रहा है, लेकिन अब वो उड़ रहा है, एक्शन में आया तो उसका डर खत्म हो गया। तो दोस्तों, हमारा भय सीधे सीधे दो बातों से जुड़ा हुआ है, नंबर वन हमारी अवधारणाओं से और नंबर टू हमारे एक्शन से। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है, आज के इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अब मैं देखता हूं कि आप लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं इस विषय पर और उसी के अनुसार फिर मैं कल के विषय का निर्धारण करूंगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।